गायत्री का सूर्योपस्थान। गायत्री अर्थात सावित्री और सविता। गायत्री मंत्र की व्याख्या का विस्तार चारों वेदों के रूप में हुआ, इसी से गायत्री को वेद माता कहते हैं। वेद जननी होते हुए भी गायत्री एक वेद मंत्र है। वेद के प्रत्येक मंत्र का एक छंद, एक ऋषि और एक देवता होता है। उनका स्मरण उच्चारण करते हुए विनियोग किया जाता है। गायत्री महामंत्र का गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषि और सविता देवता है। बोलचाल की भाषा में सविता को सूर्य कहते हैं। सविता और सावित्री का युग्म माना गया है। प्राथमिक उपासना में गायत्री का मात्र सत्ता के दिव्य शक्ति के रूप में नारी कलेवर का निर्धारण हुआ है। मानवीय आकृति में उसे देवी प्रतीक प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। यह उचित भी है। इसमें पवित्रता, सहृदयता, उत्कृष्टता, सद्भावना, सेवा साधना जैसे मातृ शक्ति में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाले गुणों का साधक को अनुदान मिलता है। इस प्रतीक पूजा से नारी तत्व के प्रति पूज्य भाव की सहज श्रद्धा उत्पन्न होती है। सद्बुद्धि, ऋतंभरा, प्रज्ञा, विवेकशीलता, दूरदर्शिता जैसी सत्प्रवृत्तियों को साहित्य में स्त्रीलिंग माना गया है। अस्तु इस चिंतन के इस दिव्य प्रवाह को यदि अलंकारिक रूप से नारी प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है तो उसे उचित ही कहा जा सकता है। इस प्राथमिक प्रतिपादन के रूप में प्रस्तुत किए गए नारी विग्रह से भी गायत्री महाशक्ति के उच्च स्तरीय स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। साकार उपासना में भी गायत्री माता का ध्यान सदा सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान महाशक्ति के रूप में किया जाता है। सूर्यमंडल मध्यस्था विशेषण के साथ ही उसे समझा और समझाया जाता है। साकार उपासना करने वाले पुस्तक, पुष्प, कमंडल धारण किए हुए मातृ शक्ति का सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान ध्यान करते हैं। निराकार उपासना करने वाले चिदाकाश एवं महदाकाश में प्रतिष्ठित तेज मंडल के रूप में उसका ध्यान करते हैं। उपासना का क्रम निराकार हो अथवा साकार, दोनों ही स्थितियों में सूर्य मंडल की स्थापना अनिवार्य रूप से रहेगी। प्रकाश के तेजोवलय को समन्वित किए बिना गायत्री महाशक्ति का ध्यान हो ही नहीं सकता। गायत्री भावये देवी सूर्यांसार कृताश्रयाम प्रात्मध्याहन संध्याया ध्यान कृत्वा जपेत सुधी शाकानंद तरंगिनी 3-4:1। बुद्धिमान मनुष्य को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्याहन और सायं त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। निराकार उपासक तो जप के साथ सूर्यमंडल की आभा को गायत्री के प्रतीक के रूप में ध्यान करते हैं। साकार उपासना में भी गायत्री माता के नारी स्वरूप को सूर्यमंडल के बीच प्रतिष्ठापित चित्रित किया जाता है। उसके मुखमंडल पर तेजोलय के रूप में सूर्यमंडल का संयुक्त किया जाना तो अनिवार्य रूप से आवश्यक ही माना जाता है। गायत्री माता का ऐसा चित्र किसी ने कदाचित ही बनाने की भूल की होगी जिसमें सूर्य के तेजो मंडल का समावेश न किया गया हो। गायत्री उपासना के अंत में सूर्यार्घ्यदान के रूप में जप की पूर्णाहुति की जाती है। उपासना के समय में दीपक की, अगरबत्ती की, अग्नि स्थापना की आवश्यकता भी सूर्य शक्ति का प्रतिनिधित्व रखने के रूप में ही की जाती है। यज्ञाग्नि में आहुति देने का विधान भी पुरश्चरणों का अंग है। इसमें भी दूरस्थ सूर्य की निकटस्थ प्रतिनिधि अग्नि की प्रतिष्ठा करने की भावना है। सविता और सावित्री की युग्म भावना एक कल्पना पर नहीं तथ्यों पर आधारित है। अग्नि तत्व से बना दृश्यमान सूर्य तो चेतन सविता देव का स्थूल प्रतीक भर है। प्रतीक पूजा का स्वरूप ही यह है कि जड़ पदार्थों के माध्यम से चेतनात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी कराई जाए। सविता चेतना ब्रह्मतेज को कहते हैं। वह अदृश्य है, ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में, दिव्य प्रखरता के रूप में सर्वत्र व्यापक और विद्यमान है। उसी के साथ आत्म चेतना की घनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रतीक रूप से सूर्य, अग्नि, पिंड, ध्यान, साधना में प्रयुक्त किया जाता है। प्रकारांतर से सूर्य उपासना का तात्पर्य ब्रह्म तेज अवतरण आत्म चेतना की पृष्ठभूमि पर संपन्न कराना है। आत्मा को पृथ्वी और ब्रह्म तेज को सूर्य की उपमा दी जा सकती है। पृथ्वी पर जो जीवन दृष्टिगोचर होता है वह सूर्य का ही अनुदान है। सूर्य आत्मा जगत अस्तुश्च, सूर्य को जगत का आत्मा बताया गया है। पृथ्वी पर जिस तरह सूर्य केंद्र से जीवन बरसता है उसी प्रकार आत्मा रूपी पृथ्वी पर ब्रह्मसत्ता के प्राण तेज की वर्षा होती है। इसी से अंतः भूमि पर विभूतियों की हरितिमा उगती और फूलती फलती है। गायत्री के साथ उनके देवता सविता का अन्योन्याश्रित संबंध इसी आधार पर जुड़ा हुआ है। गायत्री का दूसरा नाम सावित्री सविता की शक्ति ब्रह्मशक्ति होने के कारण ही रखा गया है। इस प्रकार उपचार में उपासनात्मक कलेवर की प्रतीक पूजा नारी रूप में करने के साथ ही उच्च स्तरीय ध्यान में स्थापना भी प्राण की करनी पड़ेगी। गायत्री का प्राण सविता है। शरीर को देख लेने के बाद किसी की वस्तुस्थिति उसके आंतरिक स्तर को समझने में ही विदित होती है। सविता संपर्क के लिए अग्रिम कदम बढ़ाने के पीछे भी यही कारण है। इसमें विरोध, विग्रह एवं सामंजस्य जैसी कोई बात नहीं है। इसे क्रमिक प्रगति के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। गायत्री को प्राण, प्राण को सविता कहा गया है। इस त्रिकोण विवेचन से गायत्री के सविता में होने का ही निष्कर्ष निकलता है। गायत्री सद्बुद्धि की, ऋतंभरा प्रज्ञा की देवी है। प्राण और सविता को भी इन्हीं प्रयोजनों की पूर्ति करने वाला बताया गया है। शास्त्र वचनों में इस त्रिकोण को रेखागणित के त्रिभुज की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ समझा जा सकता है। गायत्री का देवता सविता होने के संदर्भ में कुछ उक्तियां इस प्रकार हैं। दैवतम सविता प्यस्या गायत्रम छंदैव च विश्वामित्र ऋषिश्चैव प्रोच्यते ऋषिसितम। हे ऋषि श्रेष्ठ, इसका देवता सविता है, गायत्री छंद है और विश्वामित्र इसका ऋषि कहा जाता है। सवितुश्चाधिदेवो या मंत्राधिष्ठात्र देवता, सावित्री ह्यपि वेदाना सावित्री तेन कीर्तिता। देवी भागवत इस सावित्री मंत्र का देवता सविता सूर्य है। वेद मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी वही है, इसी से उसे सावित्री कहते हैं। यो देव सविता स्माकम धियो धर्मादिगोचर प्रेरित तस्य यद भर्गः तम वरेण्यम उपासमहे। जो सविता देव हमारी बुद्धि को धर्म में प्रेरित करता है, उसके श्रेष्ठ भर्ग तेज की हम उपासना करते हैं। सर्वलोक प्रसवनाथ सविता सतु कीर्त्यते यतस्तद देवता देवी सावित्री त्युच्यते ततः। अमर कोश। वे सूर्य भगवान समस्त जगत को जन्म देते हैं, इसलिए सविता कहे जाते हैं। गायत्री मंत्र के देवता सविता हैं, इसलिए उसकी दैवी शक्ति को सावित्री कहते हैं। मनोवह सविता प्राणधीय शतपथ 36 113। प्राण एव सविता विद्युत्रेव सविता शतपथ 779। यो देव सविता स्माकम धियो धर्मादिगोचर प्रेरयत तस्य तद्भर्गस्तद्वरेण्यम उपासमहे। जो देव सविता सूर्य मंडल के रूप में प्रत्यक्ष होकर धर्माधर्म संस्कारों को देखता हुआ हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता है, उसका प्रसिद्ध भर स्वप्रकाश चेतना रूप तेज स्पृहा करने योग्य है, उसी की हम उपासना ध्यान करते हैं। यो वह स प्राण अशसा गायत्री शतपथ 1/3 515। जो प्राण है उसे ही निश्चित रूप से गायत्री जानना। गायत्री को प्राण कहा गया है और प्राण ही सूर्य है। श्रुति कहती है, प्राण प्रजाना उदयतेश सूर्य, अर्थात यह उदीयमान सूर्य ही जीवधारियों में प्राण शक्ति के रूप में प्रकट होता है। यह सूर्य ही तेज कहा जाता है। ब्रह्म तेज और सविता एक ही हैं। गायत्री को तेजस्विनी कहा गया है। सविता तेज का प्रतीक है। अस्तु सविता का तेज और गायत्री के भर्ग को एक ही समझा जाना चाहिए। कहा गया है, तेजसा वह गायत्री प्रथम त्रिरात्र दाधार पदय द्वितीय अक्षर तृतीयम ता 0 3 10। तेजो वह गायत्री गो 0 5/3। ज्योतिर्वे गायत्री छंदसाम ता 0 2 जुलाई 13। ज्योतिर्वे गायत्री को 0 17 6। विद्युति वे गायत्री ता 0 2 जनवरी 12। गायत्री भर्ग गो 0 2 0 5 15। गायत्री वे रथंतरस्य योनि ता 0 5 अक्टूबर 15। तेजो वे गायत्री कपि सम 30 हाउस। सविता तेज के संबंध में किसी प्रकार भ्रम न रह जाए, उसे भौतिक अग्नि प्रकाश न मान लिया जाए, इसलिए यह स्पष्टीकरण आवश्यक समझा गया कि यह तेजस विशुद्ध रूप से ब्रह्म तत्व का है। सविता तेज को ब्रह्म तेज के अतिरिक्त और कुछ समझ बैठने की भूल किसी अध्यात्म विद्या के छात्र को नहीं ही करनी चाहिए। कहा है, सविता सर्वभूताना सर्वभावान प्रसूयते सवनात पावनाच्चैव सवितानेन चोच्यते। सकल भूतों के उत्पादक तथा पावन कर्ता होने से परमात्मा सविता कहलाते हैं। आदित्यो ब्रह्मत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम् चांदोग्योपनिषद -3 19:1। सूर्य ही ब्रह्म है, वह महर्षियों का आदेश है, सूर्य में परमेश्वर की सत्ता को समझने का उपदेश है। यद्वै तद् ब्रह्मतीदं वाव तद्योयं बहिर्धा पुरुषादाकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशः 7 चांदोग्योपनिषद -3 12:7। जो ही वह ब्रह्म है, यह ही वह गायत्री वर्णित सविता है, जो वह पुरुष से बाहर आकाश प्रकाशमान है, जो ही वह पुरुष से बाहर आकाश प्रकाशमान है। यो असो आदित्य पुरुष सो असो अहम यजु 40:17। सूर्य मंडल में जो पुरुष है वही मैं हूँ। ब्रह्म सूर्य सम ज्योति यजु 23:48। ब्रह्म सूर्य ज्योति के समतुल्य है। युंजते मन उतयुंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित विहोत्रा देधे वयुनाविदे किन्मही देवस्य सवितु परिष्टति श्वेताश्वतर 2/4। जिस सविता देवता में विद्वान अपने मन को बुद्धि को लगाते हैं और यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, वह सर्वज्ञाता एक है। उस सर्वव्यापक सर्वदेव की हम स्तुति करते हैं। तदित्यवाडु मनोगम्यम ध्येयम यत् सूर्य मंडले। उस परब्रह्म का ध्यान सूर्य मंडल में वाक और मन द्वारा किया जाता है। गायत्री उपनिषद से अनेकों उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि वे दोनों परस्पर काया और प्राण की तरह एक दूसरे के साथ सुसंबद्ध हैं। दोनों को दो योनि एक मिथुन की संज्ञा दी गई है। गायत्री के भर तेज की उपासना करने से साधक तेजस्वी बनता है। जो तेजवान है वस्तुतः वही बलवान है। मोटी काया बना लेने भर से कोई तेज रहित दुर्बल मनःस्थिति का व्यक्ति बलवान नहीं कहला सकता। तेजोयस्य विराजते स बलवान, स्थूलेषु कः प्रत्ययः। नीति, जिसमें तेज है वही बलवान है। स्थूल काया के पुष्ट होने से क्या प्रयोजन सधता है। गायत्रा साधना वस्तुतः तेजस्विता की, प्राण शक्ति की, ब्रह्मबल की उपासना है। इसी से उसकी उच्च स्तरीय साधना प्रक्रिया को ब्रह्म वर्चस विद्या कहा जाता है। इस उपार्जन में संलग्न व्यक्ति को सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। श्रुति कहती है, यो हवा एवित ब्रह्मवित पुण्या च कीर्ति लिप्ते सुरभींच गंधान सोपहत पास्या अनंताश्रिय न श्रुते या एवं वेद यश्वचे विद्वान एव मेटा वेदाना मातरम सावित्री सपद्मोपनिषद मुपास्ते। गुप्त ब्राह्मण जो गायत्री के गहन तत्वों को जानता है वह पुण्य कीर्ति लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता हुआ परम श्रेय को प्राप्त करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गायत्री का देवता सविता सूर्य विश्व के जीवन का ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भी वही है। चारों वेदों में जो कुछ है वह सब भी इस सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। तप श्रद्धा और साधना के द्वारा योगी जन इसे ही प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। नाम रूप सुविधानुसार कोई भी माना जाए पर वस्तुतः सविता देवता ही उसका वास्तविक उपास्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधक को प्रयत्नशील होना पड़ता है। देखिए, उद्यंतम वादित्य मग्निर्नु समारोहति सुषुना सूर्यरश्मि चंद्रमा गंधर्व। श्रुति इस सूर्य के अंतर्गत ही अग्नि सुषुना चंद्र गंधर्व आदि हैं। ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिवि देवी इते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्यः सामवेदेनास्तमये महीयते वेदेरसुन्यस्त्रिभिरेति सूर्यः। श्रुति यह सूर्य प्रातः ऋक् से मध्याह को यजु से और सायंकाल साम से युक्त होता है। ऋचौस्य मंडलम सामान्यस्य मूर्तिर्यजुनिच त्रिमयोय भगवान कालात्मकृत विभूम। सूर्य सिद्धांत ऋक् सूर्य का मंडल और यजु तथा साम उसकी मूर्ति है। वही काल रूप भगवान है। नत्वा सूर्य परंधाम ऋग यजु साम रूपिनम सूर्य पुराण ऋक् यजु साम रूपी परंधाम सूर्य को नमस्कार है। तथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मा नमन विश्वादित्यं भिजन्ते एकद्वय प्राणानामायतन में तद्मृतमयमे तत्प्रायण में तस्यान पुनरावर्तन तित्येष निरोध। तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा तथा विद्या द्वारा जो आत्मा की खोज कर उस आदित्य को प्राप्त करते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते। यह आदित्य ही प्राणों का आश्रय है। वही मोक्ष है, वही पद है, जीव को उसी से परम आश्रय मिलता है। भवद्भुत भविष्यम च जंगमस्थवरंच जात अस्येक सूर्यमेव का प्रभव प्रलयम विदोह असतश्च सतश्चैव कत्वैवा त्रिधात्मान्मे श्लोकेश तिष्ठति वेदान यथायत सर्वान् निवेश्य स्वेषु रश्मिषु। जो जड़ चेतन पदार्थ इस संसार में अब मौजूद हैं, भूतकाल में थे या भविष्य में होंगे, वे सभी सूर्य से उत्पन्न हुए और उसी में लीन होते हैं। यह सूर्य ही प्रजापति है। यह सत असत की योनि है। अक्षर अव्यय शाश्वत ब्रह्म यही है। यह तीनों लोकों में व्याप्त है। समस्त देवता इसी की किरणें हैं। आदित्यो ह्यादि धूतत्वात् प्रसूत्या सूर्य इच्यते परंज्योति तमः पारे सूर्ययम् सवितेति च। सूर्य सिद्धांत, वह समस्त जगत का आदिकारण है, इसलिए उसे आदित्य कहते हैं। सबको उत्पन्न करता है, इसलिए सविता कहते हैं। अंधकार को दूर करता है, इससे उसे सूर्य कहा जाता है। अथादित्य उसेयन्यत् प्राची दिश प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सनिधत्ते यद्दक्षिणा यत्प्रतीचि यदुदीचि यदधो यद्रथ्यदंतरा दिशो यत् सर्व प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान रश्मिपु सनिधत्ते। प्रश्नोपनिषद 1/6। पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर तथा उनके कोणों की सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। उसकी किरणों में समस्त जगत का प्राण धारण किया जाता है। अक्षयम मोपायम निपद्यमान माच पराजपत भिश्चरंतिम स श्रधीचि स विशुचिर्वसान अनरिवती भुवनेश्वंतः ऐत्रेय। मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है। यह कभी नष्ट नहीं होता। यह नाड़ियों द्वारा शरीर में दौड़ता रहता है। मुख और नासिका द्वारा यह आता और जाता है। यह शरीर में वायु रूप है, पर ब्रह्मांड में सूर्य रूप है। इस सविता की उपासना में संलग्न ऋषि मुनि योग के द्वारा अपनी आत्मा को तेजपुंज महाप्राण परब्रह्म में प्रविष्ट करते हैं। शुकदेव जी अपनी साधना को पूर्ण करते हुए जिस स्थिति में प्रविष्ट हुए उसका उल्लेख महाभारत में इस प्रकार मिलता है। तस्माद् योग समास्थाय त्यक्त्वा ग्रहकलिवरम् वायुभूतः प्रवेक्ष्यामि तेजो राशि दिवाकरम्। महाभारत शुकदेव जी ने कहा, मैं योग में स्थित होकर इस देह को त्याग कर तेजो राशि सूर्य में होकर प्रवेश करता हूँ। उपनिषदकारों ने इस महाउपास्य सविता देवता की उपासना का निर्देश करते हुए उसकी महान महत्ता पर भी प्रकाश डाला है और उसे आत्मिक मलिनताओं का वितरण करता माना है। सूर्यश्च मा मनुश्च कन्युपतेष् मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। यद्रात्र्या पापं कार्षम् मनसावाचा हस्ताभ्याम् पद्भ्याम् दरेश शिशन् रात्रिम्त्वलुम् पतु यद्किंच जुरित्मयि इद्मह मामृत्युनो सूर्य ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा ते प्र 10:032। जगत का प्रेरक सूर्य उन पापों से मेरी रक्षा करे जो क्रोधादि वृत्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जो रात्रि में मैंने पाप किया है, मन वाणी और हाथों द्वारा, पैरों उदर और उपस्थितेंद्रिय द्वारा किया है, रात्रि में वह लुप्त हो जाए। यह मैं अपने आप को अमृत की योनि में, जो कि सूर्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति रूप देता हूँ, स्वाहा बोलकर देता हूँ। यह वावस स्थिरचर निकाराणा निज निकेनाना मनिन्द्रिया सुरगणानात्मना। ब्रह्मोपनिषद, आप सबके आत्मा हो, अंतर्यामी हो। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं वे सब आपके ही आधार पर रहते हैं और उनके अचेतन जैसे मन इंद्रियों और प्राणों के आप ही प्रेरक हो। त्रिकाल संध्या में प्रातः मध्याह सायंकाल के लिए तीन प्रतीकों का उल्लेख है। प्रातः ब्राह्मी, मध्याह वैष्णवी और सायं शांभवी गायत्री के हंसारूढ़, गरुडारूढ़, वृषभारूढ़ स्वरूपों का वर्णन है। वस्तुतः यह तीन वेदों का ही त्रिविध स्वरूप है। सविता देवता प्रातः ऋग्वेद, मध्यान्ह यजुर्वेद और सायंकाल सामवेद स्वरूप होता है। वेदों में जिन तीन विज्ञान का भंडार है उसे साधक के अंतःकरण में अभिप्रेत करता है। ऋग से ज्ञानयोग, यजु से कर्मयोग, साम से भक्तियोग का संबंध है। सविता का ध्यान हमारी मनोभूमि को इन तीनों योग की साधना के उपयुक्त बनाता है। इन्हीं तीनों तथ्यों का ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उल्लेख है। ऋग ब्रह्मा, यजु विष्णु और साम शिव हैं। इन तीनों के द्वारा त्रिकाल संध्या द्वारा गायत्री उपासना करने वाले को ज्ञान वैभव एवं सद्गुणों की उपलब्धि होती है। इसी आधार पर एक ही परब्रह्म महत्व सविता को तीन प्रकार से तीन चित्रों में चित्रित किया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी सविता की उपासना का विधान वर्णन करते हुए उसकी महत्ता विशेषता एवं उपलब्धियों को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है। ओम नमो भगवते आदित्याखिल जगतात्म स्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्थिधि भूत निकायाना ब्रह्मादिस्तम पर्यंताना मंत्रहृदयेषु बोहिनी चाकाश दवोपाधि नावयधीयमानो भवानी केवं क्षणलग्निमेषावयवोपचित संवत्सर्गणे नामामादान विसर्गाभ्यामिमा लोकयात्रामुवाते। याज्ञवल्क्य, मैं ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप समस्त जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर त्रिपर्यंत जितने प्राणी हैं उन सबके हृदय में और बाहर भी आकाश के समान व्याप्त रहकर फिर भी सब उपाधियों से पृथक होकर आप एक अद्वितीय ईश्वर हैं। आप ही क्षण लव निमेश इत्यादि वाले संवत्सरों द्वारा तथा जल के खींचने तथा प्रदान के द्वारा समस्त जगत का जीवन पालन करते हैं। गायत्री उपासना में साधक चाहे साकार ध्यान करता हो अथवा निराकार, उसे सविता देवता के प्रकाश का ध्यान अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। निराकार प्रकाश और गायत्री माता की छवि का ध्यान, दोनों में सविता देवता के वरेण्य तेजस का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार सावित्री और सविता का अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों का अविच्छिन्न युग्म, इस तथ्य को भुलाया न जाना चाहिए। सावित्री और सविता का संबंध। शरीर और प्राण का जो संबंध है वही सविता और सावित्री में है। प्राणी के अस्तित्व को प्रकाश एवं अनुभव में लाने के लिए शरीर चाहिए और शरीर सजीव बना रहे उसके लिए प्राण की स्थिति आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक के बिना दूसरे की गति नहीं, स्थिति नहीं, उपयोगिता नहीं, शोभा नहीं। इसी प्रकार सविता और सावित्री परस्पर जुड़े हुए हैं। दोनों का मिश्रित युग्म है। अलंकार रूप से सावित्री को सविता की पत्नी भी कहते हैं। मोटे अर्थ में यह प्रातः उदय होने वाला, सायंकाल अस्त होने वाला, प्रकाश और गर्मी देने वाला अग्निपिंड भी सूर्य है। उसकी भी अपनी शक्ति एवं क्षमता है। इस संसार का सारा क्रियाकलाप उसी के प्रभाव से हो रहा है। इसीलिए उसकी स्थूल जगत में विभिन्न प्रकार की हलचलें उत्पन्न करने वाली क्षमता को लौकिक सावित्री कहा जा सकता है। वैज्ञानिक इसी अदृश्य और अविज्ञात महाशक्ति सावित्री के विभिन्न पक्षों का अनुसंधान आविष्कार करने में सृष्टि के आदि से लेकर अद्यावधि पर्यंत प्रयत्नशील हैं। उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है। आज तो बिजली, भाप, ईथर, अणु आदि क्षेत्रों में काम करने वाली सहस्रों शक्तियों को जान लिया है और उनके आधार पर विज्ञान के चरण द्रुतागति से अग्रसर हो रहे हैं। अन्यान्य ग्रह नक्षत्रों पर चढ़ाई करने की योजनाएं बन रही हैं। इसी धरती पर एक से एक अद्भुत आविष्कारों की तैयारी है। मनुष्य शरीर का कायाकल्प करके उसे चिरस्थायी बनाने की योजना है। यह सावित्री शक्ति के कतिपय पक्षों की जानकारी का परिणाम है। सावित्री प्रकृति चेतना के बारे में जितना अब तक जाना जा सका है उससे अभी असंख्य गुना जानना शेष है। सीमित बुद्धि वाला मानव प्राणी अनंत काल तक नई नई उपलब्धियां प्राप्त करता रहे तो भी प्रकृति की असीम शक्तियों की पूरी तरह जानकारी प्राप्त करना संभव न हो सकेगा। सावित्री का भांडागार अपरिमित है, इतना अपरिमित जिसकी कल्पना भी हम पूरी तरह नहीं कर सकते। गायत्री के स्वरूप में चर्मचक्षुओं से देखी और अन्य इंद्रियों की सहायता से जानी जा सकती है। पंच भौतिक जगत में यह उदीयमान सूर्य ही सविता है और उसके प्रभाव में उत्पन्न होने वाली अगणित शक्तियों का पुंज ही सावित्री है। इस युग से हमें बड़ा लाभ होता है, उसी के प्रभाव से हम जीवित हैं और अभीष्ट साधन सामग्री उपलब्ध कर रहे हैं। श्रुतियों में सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। उसी से वह प्राण प्रादुर्भूत होता है जिसके कारण प्राणियों के लिए शरीर धारण किए रह सकना, वनस्पतियों का उगना, पंच तत्वों का सक्रिय रह सकना संभव है। यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो देखते देखते यह धरती हिमपिंड की तरह ठंडी हो जाए और यहाँ सब निर्जीव हो जाए, जीवन का किंचित लक्षण भी दिखाई न पड़े। इसलिए इस अग्निपिंड सविता का भी हमारे भौतिक जीवन में असाधारण महत्व है। सविता की असाधारण रहस्यमय शक्तियों का सावित्री का उपयोग हम यंत्रों के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, चाहे तो तंत्र और मंत्र योगों द्वारा भी वैसे ही लाभ उठा सकते हैं जैसे कि भौतिक विज्ञान वाले उठा रहे हैं या उठाने की बात सोच सकते हैं। यह सूर्य योग चाहे किसी भी विधि से किया जाए भौतिक जीवन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होता रहा है, आगे यह उपयोगिता और बढ़ने की संभावना है। असली सविता जो गायत्री मंत्र का देवता है इस उदीयमान सूर्य से भी ऊंचा है। उसे असंख्य सूर्यों का सूर्य परम शक्ति स्रोत, इस सृष्टि का नियामक और परिपुष्ट कर्ता, विधाता, प्रजापति कहा जाता है। उसके साथ संबंध संपर्क बनाकर यदि सान्निध्य लाभ किया जा सके तो दृश्य सूर्य की अपेक्षा वह आध्यात्मिक सविता हमारे लिए असंख्य गुने सुख साधन प्रस्तुत कर सकता है। परमात्मा की परम शक्ति गायत्री की सविता की अविच्छिन्न क्षमता सावित्री की उपासना करके हम वह लाभ ले सकते हैं जिसके लिए यह मानव शरीर उपलब्ध हुआ है। वस्तुतः गायत्री उपासना सावित्री साधना ही हमारा जीवन लक्ष्य हो सकता है, होना चाहिए। ऐसा भ्रम किसी को नहीं करना चाहिए कि गायत्री से सावित्री भिन्न हो सकती है। एक ही शक्ति के दो नाम हैं। जब वह शक्ति भौतिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है तब उसे सावित्री कहते हैं और जब वह आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए काम आती है तब उसी को गायत्री कहने लगते हैं। मृत शरीर को जलाते समय जो अग्नि जलती है वह लोहिता और भोजन बनाने की भट्टी में जलने वाली को रोहिता कहते हैं। लोहिता और रोहिता यह दो नाम प्रयोग में आने वाले विभाजन के अनुरूप हैं। वस्तुतः अग्नि एक ही है। इसी प्रकार उस महाशक्ति को परा अपरा सावित्री और गायत्री के नाम से पहचाना जाता है। सविता तत्व के साथ संबद्ध होने के कारण उसे सविता कहा गया है। सावित्री का देवता होने के कारण उस परम तत्व को सविता कहते हैं। यह गायत्री का ही स्वरूप है। गायत्री में जिस वेरण्यम भर्ग देव सविता का स्मरण चिंतन किया जाता है वह परम तेजस्वी सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सविता प्रस्विता परमात्मा ही है। उस परमात्मा की सर्वतोमुखी सर्वोपरि शक्ति को चाहे गायत्री कहें अथवा सावित्री, वस्तुतः एक ही महत्व से उसका प्रयोजन है। सावित्री और गायत्री की एकता के कुछ प्रमाण देखिए। यश्चैव विद्धाने वेदानामा तो सावित्री संपद मुपनिषद मुपास्ते इति। गुप्त ब्राह्मण इस प्रकार विद्वान वेद माता को सावित्री के नाम से कहते हैं। ओंकार पूर्विकास्तिस्रो महात्र्याहृत्यव्यय त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयम् ब्रह्मणोमुखम्। ओंकार पूर्वक तीनों महाव्याहृतियां तथा त्रिपदा सावित्री मंत्र वेद मुख कहा जाता है। नमो नमस्ते गायत्री सावित्री त्वा नमाम्यहम्। सरस्वती नमस्तुभ्यम तुरीय ब्रह्मरूपिणी। हे गायत्री, हे सावित्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरा आपके चरणों में बार बार अभिवादन समर्पित है। हे सरस्वती, आपके लिए मेरा नमस्कार अर्पित है। हे तुरीय, आप ब्रह्म के स्वरूप वाली हैं। नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातस्त्राही माँ भवसागरात वशिष्ठ संहितार्थवांत्रिक स्तोत्र। हे तीन पदों वाली गायत्री सावित्री देवी, हम तुझे नमस्कार करते हैं। हे अजर अमर माता, मेरी भवसागर से रक्षा करो। सचिन्पी परे देवी गायत्री ब्रह्मरूपिणी आज्ञा में त्वम सावित्री परिवाराचनाय में। हे सच्चित्मयी, हे परे, हे देवी, हे ब्रह्म के स्वरूप वाली गायत्री देवी, हे सावित्री, अब आप मुझ सेवक को परिवाराचन करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। समस्त देवता चक्र मुनि पितृ गणावृते आरात्रिकम गृहणेद सावित्री मम सिद्धे। हे समस्त देवों के समूहक मुनिगण और पितृगण आवृते, हे सवित्री, अब मेरी सिद्धि के लिए इस आरात्रितिक आरती को ग्रहण कीजिए। नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्य सावित्रि कमले ब्रह्मविद्य महाविद्य वेदमातान मोस्तुते। हे सूर्य के समान रूप वाली, हे सूर्य सावित्री, हे अम्ले, आप ब्रह्म विद्या हैं, आप महाविद्या हैं तथा वेदों की माता हैं। आपके लिए मेरा प्रणाम समर्पित किया जाता है। उपरोक्त प्रमाणों में गायत्री सावित्री को एक ही माना गया है। यदि इनमें थोड़ा अंतर किया भी जाए तो वह इतना ही हो सकता है कि भौतिक प्रयोजनों में प्रयुक्त इस ब्रह्म शक्ति को सावित्री और अध्यात्म प्रयोजन में होने पर उसे गायत्री कहा जाए। सावित्री जप का लाभ स्वर्ग अर्थात सुख सुविधाओं का अभिवर्धन बताया गया है और गायत्री उपासना से मोक्ष लाभ अर्थात वासना एवं तृष्णा के बंधनों से छुटकारा मिलना प्रसिद्ध है। कहा गया है कि सावित्री जप्यनिरतः स्वर्गम आपनोति मानव, गायत्री जप्यनिरतो मोक्षोपायम च विदन्ति। सावित्री के जप करने वाले को स्वर्ग और गायत्री के जप करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावित्री त्रिपटा ज्ञेया षटकुक्षी पंचशीर्षिका अग्निवर्ण मुखा शुक्ला पुंडरीकद लक्षणा सूत संहिता गायत्री विवरण। सावित्री तीन पाद षटकुक्षी और पांच मस्तक वाली है। वह अग्निवर्ण की मुख वाली, शब्र और कमल नेत्रों वाली है। दैविक, दैहिक और भौतिक इन तीनों क्षेत्रों में सावित्री का आधिपत्य होने के कारण उसे तीन पाद वाली कहा गया है। कहते हैं कि वामन भगवान ने तीन चरणों में राजा बलि के तीनों लोक वाले राज्य को नाप लिया था। सावित्री के तीन पाद भी तीनों लोकों तक लंबे हैं अर्थात उनके प्रभाव से तीनों लोकों में अपनी स्थिति सुख शांति में बनती है। तीन लोक आकाश, पाताल और पृथ्वी को भी कहते हैं, पर यहाँ दैविक, दैहिक, भौतिक अर्थात आध्यात्मिक, शारीरिक और संपत्ति परक तीनों ही क्षेत्रों में सावित्री का प्रकाश पहुँचता है और उस महाशक्ति की उपासना से इन सभी क्षेत्रों में आनंद उल्लास की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। षटकुक्षी का तात्पर्य शरीर में छिपे हुए छहों शक्ति संस्थान सावित्री उपासना से जागृत हो जाते हैं। किसी मिल में छह इंजन हों और वे ठंडे पड़े रहें तब तो सारी मिल बंद पड़ी रहेगी, पर यदि वे एक एक करके सभी चालू हो जाएं तो मिल अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगेगी और देखते देखते उत्पादन का ढेर जमा हो जाएगा। षट चक्र मानव शक्ति में छिपे हुए अत्यंत शक्तिशाली बॉयलर, इंजन, जेनरेटर हैं। उनके सक्रिय होने पर मनुष्य साधारण जीव नहीं रह जाता वरन उसकी गणना सिद्ध पुरुषों में होने लगती है। इस षटचक्र जागरण के विधि विधान में भी सावित्री सान्निध्य को ही प्रधान आधार माना गया है, इसलिए उसे छह कुक्षी वाली, छह साधनाओं वाली बताया गया है। पांच मस्तक पांच कोशों के नाम से प्रख्यात हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, यह पांच आवरण जीव के ऊपर हैं। इनमें से प्रत्येक को एक रत्न भंडागार कहना चाहिए। कहा जा चुका है कि सावित्री का देवता सविता है, इसलिए उसे अधिष्ठान देवता के साथ अविच्छिन्न रूप से सुसंबद्ध माना गया है। सावित्री उपासना में सविता का आधार लेना ही पड़ता है। जप के साथ जुड़े हुए ध्यान में सूर्य जैसे प्रकाश के साथ संबद्ध करके ही गायत्री का ध्यान होता है। अन्य देवताओं का चित्रण वलय से रहित भी हो सकता है, पर गायत्री का नहीं, क्योंकि वह सविता की ही शक्ति है। गायत्री महामंत्र की उपासना विधि यही है। कहा है, सविता सर्वभूताना सर्वभावश्च सुयते, सर्वनाथ प्रेरणाच सविता तेंचोच्यते। सब प्राणियों में सब प्रकार के भावों को सविता उत्पन्न करता है। उत्पन्न और प्रेरणा करने से ही सविता कहा जाता है। वरेण्यम वर्णियंच संसार भय भीरुभिः, आदित्यांतर्गत यच भर्गाख्यम वा मुमुक्षुभिः। संसार के भय से भीत और मोक्ष की कामना वालों के लिए सूर्य मंडल के अंतर्गत जो श्रेष्ठ तेज है वह वंदनीय है। देवस्य सवितुर्य च भर्गमंतर्गत विभुम ब्रह्मवादि निवाह वरेण्यम तच धीमहि। सविता देव के अंतर्गत तेज को ब्रह्मज्ञानी वरेण्य अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं, उसी का हम ध्यान करते हैं। संध्या योग में इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण किया गया है और बताया गया है कि जिस भावना का हम ध्यान करते हैं वह मन को एकाग्र करने के लिए कोई प्रकाश गोलक मात्र नहीं वरन वह परम तेजस्वी परमात्मा है जो हमारी बुद्धि, अंतः चेतना, भावना एवं आस्था को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। चिंतायामो वयम भर्गो धियो यो न प्रचोदयात्, धर्मार्थ काम मोक्षेषु बुद्धि वृत्ति पुनः पुनः। हम उस तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बार बार प्रेरणा करता है। बुद्धि बोधयता यस्तु चिदात्मा पुरुषो विराट, सवितुस्तद्वरेण्यन्तु सत्यधर्मानमीश्वरम्। बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाला जो विराट चिदात्मा पुरुष है वही सत्य धर्म वाला ईश्वर रूप वंदनीय है। अगस्त्य और पाराशर ऋषियों ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। गायत्री महामंत्र का ध्यान करते समय जिस सविता को धारण करने की प्रेरणा है वह रोशनी एवं गर्मी ही नहीं देता वरन हमारी अंतःचेतना को उत्कृष्टता की दिशा में वह प्रेरणा भी देता है जिससे जीवनोद्देश्य को प्राप्त कर सकना संभव हो सके। यो देवः सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचराः प्रेरितस्य यद्भर्गस्तं वरेण्यम् उपासमहे। अगस्त्य सविता नामक जो देवता हमारी बुद्धि को धर्मादि में लगाते हैं उनके वंदनीय तेज की हम उपासना करते हैं। पाराशर सविता देवता प्रशंसनीय तेज का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को ब्रह्मत्व में प्रेरित करे। कितने ही उपासक सूर्य की आराधना के लिए भी गायत्री का उपयोग करते हैं। गायत्री को माता के रूप में मानने वाले साधक भी उसका रूप सूर्य मंडल मध्यस्था सूर्य मंडल के बीच में अवस्थित स्वरूप का मात्र देवी के रूप में ही ध्यान करते हैं। किसी भी रूप में गायत्री मंत्र की उपासना की जाए सूर्य का उससे अविच्छिन्न संबंध अनिवार्य रूप से रखना होगा। गायत्री का देवता ही सूर्य है तो उसका स्वरूप भी साथ में होना स्वाभाविक है। स्थूल विज्ञान की दृष्टि से सूर्य एक अग्निपिंड है जो आकाश में अवस्थित अनंत आकाश गंगाओं में से स्पाइरल नामक एक आकाश गंगा के परिवार के लगभग 1.5 खरब तारों में से एक छोटा सा तारा मात्र है। इसका व्यास करीब 9,00,000 मील अर्थात पृथ्वी की अपेक्षा 110 गुना बड़ा है। उसके परिवार में 9 ग्रह हैं तथा प्रत्येक ग्रह के अनेक उपग्रह हैं। बुध शुक्र और पृथ्वी का एक एक चंद्रमा है। मंगल के 2, बृहस्पति के 12, शनि के 9, वरुण के 5, हरितग्रह के 2 और पीतग्रह के 4। इसके अतिरिक्त हजारों छोटे ग्रह तथा ग्रहिकाएं एवं अगणित धूमकेतु पुच्छल तारे इस सौर परिवार में सम्मिलित हैं। यह सब सूर्य की प्रबल आकर्षण शक्ति में जकड़े हुए उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। अपने इस सारे परिवार को लेकर सूर्य स्पाइरल आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। इस एक परिक्रमा में उसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ज्योतिषियों का अनुमान है कि जब से सूर्य पैदा हुआ है तब से अब तक वह 16 ऐसी परिक्रमाएं कर चुका है। स्थूल पदार्थ विज्ञान अभी तक सूर्य के संबंध में ऐसी ही जानकारियां एकत्रित कर सका है तथा उसकी किरणों से सप्तरंग विद्युत प्रवाह एवं आणविक विकिरण का कुछ हद तक पता लग सका है। इस दिशा में और भी जानकारी एकत्रित की जा रही है पर यह सब सूर्य के स्थूल रूप का ही परिचय है। जैसे मनुष्य की सत्ता का विश्लेषण करने के लिए उसके शरीर संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं माना जा सकता, उसकी विद्या बुद्धि गुण कर्म स्वभाव प्रवृत्ति भावना चेतना एवं आत्मा का पता लगाना भी आवश्यक होता है। इसके बिना केवल शरीर विश्लेषण के आधार पर जो परिचय प्राप्त किया जाएगा वह अधूरा ही रहेगा। इसी प्रकार सूर्य की आत्मा का भी जानना आवश्यक है। इसके बिना गायत्री मंत्र का साधक इस अग्निपिंड सूर्य के जान लेने मात्र से अपना प्रयोजन पूर्ण नहीं कर सकता। एक अनंत चैतन्य जीवन एवं शक्ति का समुद्र इस विश्व में लहरा रहा है। जड़ प्रकृति का परमाणु संकुल उस चेतना सत्ता की तरंगों से ही तरंगित होकर गतिवान हो रहा है। जड़ पदार्थों में अपनी निज की कोई शक्ति या चेतना नहीं है। जब प्रलय होती है तो वह सब राख के ढेर के समान निष्प्राण गतिहीन हो जाता है। संसार में जो कुछ हलचल हो रही दिखती है उसके मूल में वह चेतना का महाभंडागार ही काम कर रहा है। जैसे देह के निर्जीव कलेवर में आत्मा का ही संसार गतिशील रहता है वैसे ही जड़ प्रकृति में जो चेतना होती दिखाई पड़ती है उसका कारण वह चेतना सागर ही है जिसके लिए गायत्री मंत्र में सविता शब्द का प्रयोग हुआ है। यह प्रकाशपिंड सूर्य उस सविता का एक बाह्य शरीर स्थूल कलेवर मात्र है। सूर्य की गर्मी और रोशनी हर किसी को दिखती है यह उसकी स्थूल शक्ति है। इसके भीतर एक और सूक्ष्म सत्ता उसके अंतर में मौजूद है वह है जीवन शक्ति। प्राणियों को उत्पन्न करने पोषण और अभिवर्धन करने का विश्वव्यापी कार्यक्रम उस सूर्य की आत्मा पर ही आधारित है। रोशनी और गर्मी मशीनों से भी पैदा की जा सकती है पर उनसे जीवन नहीं मिल सकता। वैज्ञानिक जानते हैं कि सूर्य न होगा तो पृथ्वी पर जीवन का भी कोई चिन्ह शेष नहीं रहेगा। श्रुति में सूर्य को संसार की आत्मा बताया गया है। आकाश में दौड़ने वाले सूर्य के बाह्य कलेवर को गर्मी और रोशनी का पिंड कह सकते हैं पर उसकी आत्मा जगत का जीवन है। इस जीवन शक्ति का दूसरा नाम प्राण शक्ति भी है। सूर्य की आत्मा को ही महाप्राण कहा गया है। उस महाप्राण की बूंदें विभिन्न प्राणियों में अल्प प्राण के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। गय कहते हैं प्राण को, त्री कहते हैं त्राण उद्धार उत्थान करने वाली को। प्राण शक्ति का उत्थान करने वाली विद्या को गायत्री कहा जाता है। अपने देवता सविता से गायत्री महामंत्र में प्राण शक्ति अभिप्रेत होती है और उसी का एक अंश अपने में धारण करके गायत्री उपासक अपने आप को धन्य बनाता है। सूर्य के माध्यम से प्रस्फुटित होने वाला महाप्राण परब्रह्म परमात्मा का यह अंश है जिससे इस विश्व ब्रह्मांड का संचालन होता है। एक से अनेक बनने का ब्रह्म संकल्प ही महाप्राण बनकर फूट पड़ा है। यह निर्झर जिस दिन तक झर रहा है उसी दिन तक सृष्टि है। जिस दिन परम प्रभु उस संकल्प को समेट लेंगे उसी दिन महाप्राण शांत हो जाएगा और फिर महाशून्य के अतिरिक्त और कुछ भी शेष न रहेगा। यह ब्रह्म संकल्प महाप्राण परब्रह्म की सत्ता से भिन्न कोई बाहरी पदार्थ नहीं वरन उसी का एक अविच्छिन्न अंग है। परमात्मा अनंत है, उसकी सत्ता असीम है। उस अनंत असीम अचिंत्य का एक भाग जो सृष्टि के संचालन में उसकी समस्त प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रखने में लगा हुआ है, उस महाप्राण को ही सूर्य की आत्मा सविता देवता समझना चाहिए। प्राणी का जीवधारी का सीधा संबंध इसी से है। जीवन की बाह्य और आंतरिक सुव्यवस्था के लिए, प्रगति और शांति के लिए परब्रह्म की महाप्राण सत्ता अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध करना प्राणी के लिए अभीष्ट होता है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए गायत्री महामंत्र द्वारा सविता देवता की उपासना की जाती है। यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि गायत्री महामंत्र की शक्ति इस अग्निपिंड सूर्य पर अवलंबित है। यह तो रोशनी और गर्मी मात्र देता है, यह सब तो बिजली की मशीनों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इतने मात्र के लिए किसी उपासना की क्या आवश्यकता थी। गायत्री सूर्य की आत्मा सविता शक्ति के साथ उपासक को संबंधित करती है, जिसके द्वारा वह परब्रह्म महाप्राण को अपने शरीर और अंतःकरण में आवश्यक मात्रा में धारण करके लौकिक सुख एवं आत्मिक शांति को अनुभव करता हुआ जीवन के परम लक्ष्य हो प्राप्त कर सकता है। यह महाप्राण जब शरीर क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो आरोग्य आयुष्य तेज पोज बल उत्साह स्फूर्ति पुरुषार्थ इंद्रिय शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जब वह मनमोक्ष में अवतीर्ण होता है तो उत्साह स्फूर्ति प्रफुल्लता साहस एकाग्रता स्थिरता धैर्य संयम आदि सद्गुणों के रूप में देखा जा सकता है। जब उसका अवतरण आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है तो त्याग तप श्रद्धा विश्वास दया उपकार प्रेम विवेक आदि के रूप में दिखाई देता है। तीनों ही क्षेत्र उस महाप्राण से जैसे जैसे भरते जाते हैं वैसे ही मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर, लघुता से विभुता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ने लगता है। आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्ति का यही मार्ग है। गायत्री के द्वारा सविता देवता को महाप्राण को उपलब्ध करने का प्रयोजन ही यही है। सविता देवता यद्यपि सूर्य का ही दूसरा नाम है, पर यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि जो अंतर शरीर और आत्मा का है वही सूर्य और सविता का है। गायत्री महामंत्र का देवता सूर्य वही महाप्राण है। उसका स्पष्टीकरण शास्त्रों में स्थान स्थान पर विस्तार पूर्वक किया गया है। योसावादित्य पुरुष त्रियो उपनिषद 6:5 जो सूर्य है सो मैं हूँ। प्राणो वै अर्क शतपथ 0:7:23 प्राण ही सूर्य है। सश वैश्वानरो विश्व रूप प्राणिग्निरुदयत प्रश्नोपनिषद 1:7 सूर्य के उदय होने पर सारे विश्व में प्राणाग्नि का संचार होने लगता है। सहस्र रश्मि श्रद्धा वर्तमान प्राण प्रजानामुदयतेश सूर्य प्राण ही सहस्र रश्मियों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान प्रजा को उत्पन्न करने वाला सूर्य है। भोसो तपन्नुदैति से सर्वेशा भूताना प्राणाना दायोदैति श्रुति इस सूर्य से ही सब प्राणियों को प्राण प्राप्त होता है। आदित्यो वै बाह्य प्राण उदयतेशत देन चाक्षुष प्राणामनुग्रहणीते प्रश्नोपनिषद 1:7 बाह्य जगत में यह प्राण आदित्य रूप होकर दशों दिशाओं में विद्यमान है। विश्वरूपम हरिण जात वेद से परायण ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि श्रद्धा वर्तमान प्राण प्रजानामुदयतेश सूर्य प्रश्नोपनिषद 1:8 विश्वरूप व्यापक सर्वाधार प्रकाशवान तप किरणों वाला यह सूर्य समस्त जीवों का प्राण होकर उदय होता है। सूर्याद भविंत भूतानि सूर्येन पालितानि तु सूर्येयं प्राप्नुवन्ति सूर्य सोहमेव च सूर्य से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी से उनका पालन होता है, उसी में वे लय हो जाते हैं, जो सूर्य है सो ही मैं हूँ। सूर्य गायत्री के देवता सविता का स्थूल प्रतीक है। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रकृति की विलक्षणताओं का सावित्री की गरिमा में यत्किंचित ज्ञान एवं उपयोग जानने का प्रयोग करते और जो उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनसे सांसारिक सुविधाएं बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसी स्तर का एक वैज्ञानिक प्रयोग आत्मविद्या विशारद योगीजन भी करते हैं। वे अपने शरीर एवं मन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत अद्भुत अविज्ञात शक्ति संस्थानों की सहायता से प्रकृति की सूक्ष्मता के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और वहां से वैसी ही विलक्षण उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर वहां छिपी पड़ी रत्न राशि को बटोरते रहते हैं। तथाकथित ऋषि मुनियों का आधार यही है। जो कार्य किन्हीं शक्तिशाली यंत्रों के द्वारा हो सकता है वही कार्य शरीर संस्थान के वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा भी हो सकता है। इसी प्रणाली का नाम तंत्र है। जिस प्रकार बंदूक चलाकर किसी का प्राण हरण किया जा सकता है वैसे ही तंत्रोक्त कृत्या से भी अनिष्ट उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार विद्युत संबंधों से धातुओं के स्वरूप को बदला जा सकता है, उसी प्रकार तांबे को सोने में परिणत करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कितने ही सिद्ध पुरुष ऐसा करते भी रहे हैं। नागार्जुन, रावण आदि ऐसे ही असुर संप्रदाय के तांत्रिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने निर्धारित तपश्चर्याएं करके शरीरों से इतनी अणुशक्ति संचालित कर ली थी कि वे अपने मनोबल के द्वारा अभीष्ट वस्तुएं तथा परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते थे। दक्षिणमार्गी ऋषि मुनि इसी प्रयोजन को अपने ढंग की सात्विक योग साधनाओं से संपन्न करते थे, इसलिए उनकी पद्धति मंत्र योग कहलाती थी। दक्षिण और वाम मार्ग में सात्विक और तामस का अंतर रहने के कारण उन्हें तंत्र विद्या और मंत्र विद्या का अलग अलग नाम दिया है। जो भौतिक लाभ मंत्र योगी उठा सकता है, वही चमत्कार उत्पन्न कर सकना तंत्र योगी के लिए भी संभव है। सविता की महाशक्ति सावित्री एक ही है, उससे संपर्क बनाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इनमें से एक तरीका यंत्र को माध्यम बनाकर साधना विधान के प्रयोग का है, दूसरा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपकरणों एवं यंत्रों के माध्यम से लाभान्वित होने का है। आज यह यंत्र विज्ञान उस क्षेत्र में काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कारण सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तंत्र और मंत्र क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने तपश्चर्या की कठोरता से डरकर मुंह मोड़ लिया, फलस्वरूप वहां सुनसान ही दृष्टिगोचर हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक तत्परता के साथ इस क्षेत्र में भी काम किया जाता रहे और ऋषि मुनियों की बातें कल्पना समझी जाने का अवसर न आने देकर उस विज्ञान को मानव जाति के कल्याण में प्रस्तुत किया जाए। सविता और सूर्य पर वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टि। विश्व रचना के दो प्रधान तत्व हैं, एक प्राण, इसे आध्यात्मिक भाषा में देव भी कहते हैं, दूसरा भूत। इन दोनों तत्वों का जहां भी मिलन हो जाता है, वहीं दृश्य प्रकृति, गतिमान और क्रियाशील जीवन के दर्शन होने लगते हैं। केवल भूत पदार्थ प्राण के बिना स्पंदन नहीं कर सकता, इसलिए भौतिक जगत में जहां भी जीवन तत्व है वह प्राण ही है, इसे ही गायत्री कहते हैं। मनुष्य शरीर में यह दोनों शक्तियां स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। बाल्यावस्था में छोटा सा पंचभौतिक पदार्थों का पिंड छोटा सा प्राण धारण किए हुए था, तब उसकी शक्ति और तेजस्विता कम थी, पर जैसे जैसे शरीर का विकास होता है और शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ती है, शक्ति और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अवस्था के इस क्रम से बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था को गायत्री समिधा कहा गया है, क्योंकि प्राण तत्व इन्हीं में जलता है। उसके बाद दोनों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं, प्राण निकल जाता है और पंचभूतों से बना हुआ नितांत प्राकृत शरीर पड़ा रह जाता है। इस छूटे हुए शरीर को ऋग्वेद में यद गायत्री अधि गायत्र माहितम 106.4.23 अर्थात पंचभूतों से बना शरीर मर्त्य गायत्री है। इसमें सोचने, समझने, सुख दुख अनुभव करने, क्षोभ और विकलता व्यक्त करने वाली शक्ति प्राण थी। शरीर निस्पिंद और अनुभवहीन होता है, इसलिए सुख दुख ही नहीं मनुष्य जीवन की सारी हलचलें, परिवर्तन, गति, उन्नति, अवनति का कारण भी प्राण ही है। यदि सूक्ष्म रूप से विचार करें तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो प्राण शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है वह भी भौतिक है। किरणें, ज्योति या अग्नि जैसा कोई स्थूल तत्व कह सकते हैं, उसे नियंत्रित और प्रेरित करने वाली एक तीसरी मनोमय शक्ति है। इसी की इच्छा और संकल्प शक्ति से शरीरगत व्यापार चलते हैं, इसलिए गायत्री इस एक शब्द में ही पंच भौतिक, प्राण और मंत्रिक शक्ति का समग्र रूप आ जाता है। शास्त्रों में इसे भौतिक क्लेश और प्रपंच से मुक्ति दिलाने वाली विद्या कहा गया है, अर्थात जो विचार पूर्वक इन तीनों शक्तियों का अलग अलग अनुभव करते हैं, फिर उनकी अधोगति नहीं होती। तुम्ही जानी कछु रहे न शेषा, तुम्ही पाए कछु रहे न क्लेशा, इसी गायत्री शक्ति की स्तुति है, जो अब विज्ञान सम्मत भी है। गायत्री का आविर्भाव कहाँ से होता है, यह प्रश्न उठता है तो उपनिषदकार कहते हैं, देवात्म शक्तिम स्वगुणे निगड़म, देव माया या इंद्र शक्ति ही वह सत्ता है जो विश्व गायत्री अर्थात अनेक रूपों में विकसित होता है। यह देवशक्ति या इंद्र कौन है, तस्य दृश्य शतादश, सूर्य ही वह इंद्र है जिसकी हजारों किरणें हैं, एक एक किरण एक एक रूप है, इन किरणों में प्राण शक्ति भरी पड़ी है। सूर्य को त्रयी विद्या भी कहा है, अर्थात सूर्य स्वयं भी एक वैसी ही गायत्री है, जिस तरह की एक गायत्री शरीर, प्राण और मनोमय रूप में धरती पर विद्यमान है, उसमें सूर्य का ही प्राण और प्रकाश काम करता है। पुराणों में सूर्य शक्ति के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया गया है। सर्वकारण भूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसाम नमः, सूर्य स्वरूपाय प्रकाशात्म स्वरूपिण भास्करायन्म स्तुभ्यम तथा दिनकृतन्म, मार्कंडेय पुराण 75:6। अर्थात हे सूर्य भगवान, आप ही ज्ञान चित वाले पुरुषों के लिए निष्ठा स्वरूप तथा सर्वभूतों के कारण स्वरूप हैं। आप ही सूर्यरूपी प्रकाश और आत्मरूपी भास्कर हैं। आप दिनकर को नमस्कार है। इन पंक्तियों में सूर्य का जो वर्णन किया है उससे दो बातें ज्ञात होती हैं। एक, सृष्टि में जो चेतना है वह सूर्य का ही प्राण और प्रकाश है, तथा टू, संपूर्ण दृश्य प्रकृति, वृक्ष, वनस्पति, समुद्र, नदियां और सौर मंडल के दूसरे नक्षत्र, वह सब सूर्य के द्वारा ही उपजे और गतिमान हैं। सूर्य ही संपूर्ण दृश्य प्रकृति की आत्मा है। गायत्री महाविज्ञान वस्तुतः सूर्य का ही विवेचन है। उससे आधिदैहिक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होने की जो बातें कही गई हैं, वह वस्तुतः सूर्य की दृश्य अदृश्य शक्तियों की वैज्ञानिक शोध ही है। प्रयोगों का तरीका भिन्न है, मानसिक ध्यान का है, पर उसकी वैज्ञानिकता में बिल्कुल संदेह नहीं है। आज के वैज्ञानिकों ने जो खोजे की हैं, वे इन बातों को अक्षरशः पुष्ट करती हैं। वनस्पति शास्त्र पाटनी और कृषि शास्त्र एग्रीकल्चर के जानने वाले लोगों को मालूम है कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वह सब सूर्य के अस्तित्व में होने के कारण ही हैं। सूर्य न होता तो वृक्ष वनस्पति का नाम भी न होता और शायद जीवन नाम की कोई वस्तु भी न होती। जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट से धागे निकालती और अपना जाल बुनती रहती है, उसी प्रकार सूर्य गर्भ से निकला हुआ प्रकाश ही सृष्टि का ताना बुनता रहता है। जब तक सूर्य है तब तक सृष्टि है। जिस दिन उन्होंने अपनी माया समेटी उसी दिन सृष्टि का अंत हुआ। वनस्पति का 95% भाग सूर्य से विकसित होता है। प्रकाश शक्ति का जिस क्रिया से रासायनिक शक्ति केमिकल एनर्जी में रूपांतर होता है, उसे विज्ञान में बड़ा महत्व दिया गया है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वृक्ष वनस्पतियां पृथ्वी से पोषण और जीवन तत्व प्राप्त करती हैं। पृथ्वी से तो कुल 5% विकास सामग्री ही उन्हें प्राप्त होती है। हम अनुभव नहीं करते, अन्यथा हमारे शरीर में जो प्राण और चेतना विकसित होती है वह सूर्य की इस दृश्य प्रकाश शक्ति का ही प्रतिफल है। यह प्रकाश कण चाहे सीधे मिलते हों अथवा अन्न के द्वारा, बात एक ही है। अन्न, फल, फूल, पत्ते आदि जो कुछ भी हम खाते हैं उनमें यह प्रकाश कब से सोखे हुए रहते हैं। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि कोयला आग पकड़ते ही धधकने लगता है। इसका कारण भी कोयले में सूर्य प्रकाश कणों की उपस्थिति होती है। सूर्य द्वारा प्रकीर्ण प्रकाश प्राण विद्युत में किस प्रकार परिवर्तित होकर मनुष्य शरीर में पहुंचता है। वैज्ञानिक सूर्य प्रकाश की स्थूल गतिविधि को ही अब तक जान सके हैं। हमारा मानसिक संबंध भी सूर्य से है और उसे शब्दों मंत्रों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। अभी इस बात को वैज्ञानिक नहीं जान पाए, पर भारतीय योग द्वारा मिलने वाले अनेक चमत्कारिक लाभों का रहस्य यही है कि हम अपनी आत्मा अर्थात सूर्य की अक्षय शक्ति से संबंध स्थापित कर लेते हैं और उस शक्ति का मनमाना उपयोग कर सकने की स्थिति में हो जाते हैं। गायत्री सिद्धि इसी रहस्य का उद्घाटन और प्राप्ति ही है। प्राणी शब्द प्राण से बना है। जिसमें प्राण है वही प्राणी है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु या पक्षी हो। प्राण इस प्रकार से एक स्वतंत्र सत्ता है जो इंद्रिय आदि शारीरिक अवयवों से भिन्न होती है। सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है वह प्राण की ही उत्पत्ति है। इटली के महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक बार यह घोषणा की कि सूर्य संपूर्ण है ही नहीं। इस पर सारे संसार में एक बार तहलका मच गया। लोगों में खलबली मच गई कि सूर्य इतना साफ दिखाई देता है, फिर उसका संपूर्ण न होना कैसे हो सकता है। गैलीलियो ने एक बार यह समझाने की चेष्टा भी की कि वह तो एक प्रकार का आवेश चेतना है जो सौर मंडल के प्रत्येक परमाणु में प्रतिभासित है। यही नहीं, परमाणुओं में पाए जाने वाले सौर बीज उतने ही शक्तिशाली और समर्थ हैं जितना स्वयं सूर्य। इस बात को तब तो किसी ने नहीं समझा, पर खगोल विद्या का अध्ययन तेजी से अवश्य प्रारंभ किया गया। तब से अब तक सूर्य का जितना अध्ययन किया जा चुका है उससे गैलीलियो के सिद्धांतों की भी पुष्टि होने लगी। स्मरण रहे, गायत्री का देवता एवं शक्ति स्रोत सविता अर्थात सूर्य ही है। अगर हम यह जानना चाहें कि सूर्य का मानव जीवन से क्या संबंध है, तो विज्ञान की भौतिक उपलब्धियों को ही देखकर संतुष्ट नहीं रह जाना होगा, वरन उनके आधार पर भारतीय अध्यात्म की संगति पर भी विचार करना आवश्यक होगा। पाश्चात्य देशों में उसे जलवायु, वनस्पति और दृश्य जगत में परिवर्तनों के लिए प्रमुख उत्तरदायी माना जाता है, किंतु भारतीय आचार्यों का मत है कि मनुष्य भावनाओं का भी सूर्य से घनिष्ठतम संबंध है। इस तादात्म्य की उपेक्षा करके मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। गैलीलियो ने इसी सूक्ष्म विज्ञान पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया था। तब उसकी बातों की उपेक्षा की गई। बाद में वैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन किया और अब तक जो कुछ खोजे हुई उनसे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य पूर्णतया सूर्य पर ही आश्रित है। उससे मानसिक संबंध स्थापित करके अनेक प्राकृतिक रहस्य और शक्तियां प्राप्त करने एवं आत्म विकास में प्रकाश पाने की विस्तृत खोज इस दिशा में गायत्री विद्या के नाम से हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और सूर्य समान तत्वों से बने हैं, अंतर केवल ठोस और गैसीय अवस्था का है। पृथ्वी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, गंधक, कार्बन, सोडियम आदि अनेक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें ठोस से तरल एवं गैसीय स्थिति में भी बदला जा सकता है, वह सब तापमान का खेल है। यह सब तत्व सूर्य में भी पाए जाते हैं, किंतु उच्च ताप के कारण वहां स्थूल कुछ भी नहीं है। गैस स्थिति में यह तत्व सूर्य में विद्यमान है, इसलिए मनुष्य प्रकृति में जो गुण संभव है वह सूर्य में भी है, और उन गुणों को आकर्षित कर मनुष्य बिना किसी औषधि या खाद्य के अपना स्वास्थ्य और आरोग्य स्थिर रख सकता है। मनुष्य का शरीर सूर्य और पृथ्वी के तत्वों के सम्मिश्रण से बना है, इसलिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से शरीर पृथ्वी से ही प्रभावित नहीं होते, वरन उन पर सूर्य का भी प्रचंड हस्तक्षेप रहता है। हम यदि शरीर पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि अन्न, जल आदि पृथ्वी का रस सेवन करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, गंधक, सोडियम, कैल्शियम आदि विभिन्न तत्व उत्पन्न होते हैं, वहां उनमें इन तत्वों से भी सूक्ष्म प्राण शक्तियां भी क्रियाशील हैं। प्राण के द्वारा ही हमारे शरीर में स्पंदन है। छींकना, जम्हाई लेना, अपान वायु का विसर्जन, निद्रा, पलक झपकना आदि क्रियाएं प्राण के द्वारा ही संभव हैं। यह क्रियाएं जड़ तत्व मात्र नहीं कर सकते। प्राण इन सब तत्वों से अधिक सूक्ष्म है, इसलिए पहचान में नहीं आता, पर सूर्य विज्ञान के द्वारा उसे आसानी से समझा जा सकता है। प्रश्नोपनिषद में कहा है, परमात्मा ने प्राण उत्पन्न किया। प्राण से श्रद्धा, बुद्धि, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियों, मन और अन्न सब बने। शास्त्रकार की इन बातों को समझने और अवगाहन करने के लिए यद्यपि यौगिक साधना पद्धतियां विकसित हुई हैं, प्राण की अनुभूति के लिए ही अनेक प्रकार के योगों का आविर्भाव हुआ। प्राचीन काल में इस देश के निवासियों ने प्राण तत्व पर एक प्रकार से अधिकार ही कर लिया था, इसीलिए हम भारतीय विश्व की सर्वसमर्थ जाति बन सके थे। ज्ञान विज्ञान हमारी मुट्ठी में था, वह इस शक्ति का ही चमत्कार था। प्राण को ही विवेकानंद ने लेटेंट हीट या साइकिक फोर्स कहा है, अर्थात चेतना को धारण करने वाली शक्ति प्राण है। प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु जीवन शक्ति एवं चेतनावाचक है, इसीलिए प्राण शब्द का अर्थ चेतन शक्ति के लिए किया गया है। यह प्राण सूर्य की ही देन है, अर्थात विश्व में जितने भी प्राणी हैं, वे सूर्य का ही तेज धारण किए हुए हैं। समस्त चेतना सूर्य की ही है, क्योंकि यह प्राण सूर्य से ही आता है। उपनिषद कहता है, यथाग्नेय क्षुद्रस्फुल्लिंगा व्युचरन्त्येवमेवास्पादात्मनः सर्व प्राणा बृहदारण्यक 2:1220, अर्थात जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिनगारियां निकलती हैं, वैसे ही इस आत्मा से समस्त प्राण निकलते हैं। आत्मा की व्याख्या में शास्त्रकार ने बताया, यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौम यजुर्वेद 47:17, अर्थात उस सूर्य मंडल में जो पुरुष है वही मैं हूँ। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुश्च ऋग्वेद 1:125:1, इस समस्त विश्व की आत्मा सूर्य है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी के समान प्राण सूर्य लोक से स्फुरित होता है, और वही वृक्ष, वनस्पति, नदी, नद और वायुमंडल से सृष्टि में पहुंचकर अनेक जीव के रूप में दिखाई देता है, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ जो कुछ चेतना है वह सब एक ही आत्मा सविता है। सूर्य हालांकि उसका स्थूल प्रतीक है, परंतु यह प्रतीक ही इतना सटीक है कि उसे देखते हुए सविता देवता की समस्त विशेषताओं का आगमन किया जा सकता है। प्रकाश के रूप में सूर्य से आने वाली प्राण शक्ति द्वारा ही पृथ्वी पर जीव का आविर्भाव हुआ। स्मरणीय है कि सूर्य के प्रकाश में विद्युत, ऊष्मा और रूति तीनों गुण हैं। प्राण के भी यही तीनों गुण हैं। खगोलशास्त्रियों का कथन है कि सविता देवता के स्थूल प्रतीक सूर्य में मूलतः दो ही तत्व पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। सूर्य हाइड्रोजन का आहार करता है और उसके चार परमाणुओं को हीलियम के एक परमाणु में बदल देता है। इसी से उसमें शक्ति आती है, ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है। यदि यह क्रिया न होती तो सूर्य दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वह सौर मंडल के समग्र भाग में चेतना रूप में छाया हुआ है। दिखाई केवल उतना हिस्सा देता है जहां यह क्रिया होती है, अन्यथा सूर्य सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी तत्व है। अब चाहे उसे आत्मा कहें, प्राणपुंज कह लें या हाइड्रोजन का जलता हुआ गोला कह लें, यदि किसी को यह भांति हो कि सूर्य आग का जलता हुआ गोला है तो उसे दूरदर्शी टेलीस्कोप से सूर्य का अध्ययन करना चाहिए। उससे पता चलेगा कि सूर्य में यज्ञ कुंड के समान लपटे ही नहीं फूटती, वरन उसमें से ऊर्जा भंवर जो कि प्रकाश, विद्युत और गर्मी का सम्मिश्रण होता है, फूटता रहता है। इसी तरह की क्रिया हमारे शरीरों में होती है। विचारों के रूप में इसी तरह की ऊर्जा हमारे शरीरों में विद्यमान है। यह केवल स्पंदन जैसी क्रिया है, इसलिए दिखाई नहीं देती, पर हमारे शरीर की अधिकांश शक्ति इसी तरह अभिव्यक्त होती है। यदि मनुष्य को विभिन्न स्थूल तत्वों का प्राणी कहें और स्वल्प क्षमता वाला माने तो सूर्य को भी उन्हीं शक्तियों का सूक्ष्म गैसीय स्थिति का विचारशील प्राणी मानना पड़ेगा। उसकी शक्ति चूंकि अनंत और विशाल है, वह निरंतर देता रहता है, इसलिए उन्हें देवता नामक आदरसूचक शब्द से संबोधन करने की परंपरा रही है। सूर्य को यदि इस अर्थ में भावनाओं और विचारों की केंद्रीभूत शक्ति माने और यह कल्पना करें कि मनुष्य उनसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, औद्योगिक और बौद्धिक वरदान प्राप्त कर सकता है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र द्वारा उसी विद्या का उद्घाटन पृथ्वी पर किया गया है। गायत्री द्वारा सविता देवता की उपासना। ध्वनि से संबंधित एक सर्वज्ञात तथ्य है कि समान कंपन गति वाले अंग्रेजी के वाई के आकार का एक उपकरण ट्यूनिंग फोक तथा एक तार को लें। तार पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मोड़कर रख दें। अब ट्यूनिंग फोक को किसी ठोस से टकराकर कंपन उत्पन्न करें और तार के समीप लाएं। स्पष्ट दिखाई देता है कि कागज का वह छोटा सा टुकड़ा तार पर नाचने लगता है, जबकि तार और ट्यूनिंग फोक के मध्य संपर्क का माध्यम केवल आकाश था। ट्यूनिंग फोक के कंपन समान अवस्था वाले तार में भी कंपन उत्पन्न कर देते हैं। तार के इन वास्तविक कंपनों के कारण ही कागज का टुकड़ा नाचने लगता है। एक और प्रयोग है, पंचम स्वर पर चढ़े हुए तबले को कसकर रख दें। बरसात के दिनों में यदि बादल पंचम स्वर में गरज उठे तो उसकी गड़गड़ाहट का पृथ्वी में रखे हुए तबले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखें। तबले का चमड़ा अपने आप फट जाएगा। यह शब्द की शक्तिशाली तरंगों के द्वारा होता है। इन दो प्रयोगों के समान ही समान तत्वों वाले मनुष्य और सूर्य में मानसिक संबंध स्थापित करने का काम वह 24 अक्षरों के कंपन करते हैं जिन्हें गायत्री मंत्र कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और मनुष्य में तात्विक एकता है। शास्त्रकार का कथन है, सूर्यात्मा जगतस्थुषश्च, सूर्य जगत की आत्मा है, जबकि हमारी चेतना हमारे शरीर जगत की आत्मा है। इन दो चेतनाओं को समान गति से कंपित और संबंध स्थापित कर सकने की सामर्थ्य उन 24 अक्षरों में है जिन्हें गायत्री मंत्र कहते हैं। विज्ञान का यह नियम है कि उच्च स्तर या अधिक शक्ति का प्रवाह निम्न स्तर अथवा कम शक्ति वाले केंद्र की ओर तब तक बहता है जब तक कि दोनों समान न हो जाएं। गायत्री से प्राप्त सिद्धियां इसी तादात्म्य की परिपक्व अवस्था ही हैं। जब मनुष्य भौतिक शरीर में ही सूर्य की चेतना के समान सर्वव्यापी, सर्वदर्शी और सर्वसमर्थ हो जाता है, वह न केवल जलवायु, लोगों के स्वास्थ्य, मन की बातें जान लेने की सामर्थ्य पा लेता है, वरन इनसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों और शक्तियों का स्वामी हो जाता है। उसका विस्तृत विवरण किया ही नहीं जा सकता। वह सारे संसार को भी नष्ट कर सकता है, किंतु सूर्य देवता से संपर्क स्थापित होने के बाद गायत्री उपासक में उन्हीं की सी करुणा, सद्बुद्धि और पदार्थ उत्सव की भावना विकसित होने लगती है। दूसरे शब्दों में, यदि गायत्री उपासक उपासना के साथ साथ अपने सद्गुण, सद्विचारों को अधिक से अधिक सत्कर्मों में लगाने लगता है तो उसकी साधना की सफलता और भी सस्वर हो उठती है। कोई मनुष्य शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठा हो, उस समय अन्य कोई उसके पास जाकर भावना पूर्वक कुछ निवेदन करे तो उससे आशातीत समर्थन प्राप्त किया जा सकता है, बजाय तब जबकि वह अस्त व्यस्त और अशांत स्थिति में हो। कोई तालाब स्वच्छ और शांत हो तो उस पर एक छोटा सा कंकड़ फेंककर ही तरंगों का उत्पादन किया जा सकता है। यह भाव और विज्ञान दोनों का मिला जुला स्वरूप है। भारतीय आचार्यों ने जो आचार संहिताएं और वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं वे उक्त सिद्धांत को दृष्टि में रखकर ही किए। पिछले दिनों हमने भी उसी सूक्ष्म दर्शन का आश्रय लेकर एक प्रयोग किया था। वह सहस्रकुंडीय यज्ञ के रूप में था। हमने पढ़ा था कि कुछ विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट रीति से गायत्री उपासनाएं एवं यज्ञादि प्रक्रियाएं संपन्न की जाएं तो उनसे सूर्य देव की आध्यात्मिक शक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित एवं आकर्षित किया जा सकता है। उनसे न केवल अपने लिए वरन संपूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए सुख समृद्धि और शांति का अनुदान उपलब्ध किया जा सकता है। अक्टूबर 1958 का सहस्रकुंडीय यज्ञ एक ऐसा ही प्रयोग था। पीछे मौसम वैज्ञानिकों ने भी हमारी मान्यता के एक भाग की पुष्टि कर दी। July 1 से 31 December 1958 तक खगोल शास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय शांत सूर्य वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वाइट सन, संक्षेप में इक्विसी मनाया। यह नाम इसलिए रखा गया कि इन दो वर्षों में सूर्य बिल्कुल शांत रहा और वैज्ञानिकों को उस पर अनेक प्रयोग और अध्ययन करने का अवसर मिला। लगभग इसी अवधि में हमारे उस यज्ञ की तैयारी हुई थी। साधकों ने एक वर्ष पूर्व से ही गायत्री के विशेष पुरस्चरण प्रारंभ किए थे और अक्टूबर 1958 में 4 दिन तक यज्ञ कर शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति दी थी। गायत्री का देवता सविता है, इसलिए इस गायत्री अभियान का भी उद्देश्य उसका अध्ययन और प्रयोग भी था और उन उपलब्धियों से सारे विश्व समाज को लाभान्वित कराना भी जो ऐसे अवसरों पर देव शक्तियों से सुविधापूर्वक अर्जित की जा सकती है। उस यज्ञ के बाद से विश्व की गतिविधियों का हम बराबर अध्ययन कर रहे हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि न केवल प्रकृति अपने विधान बदल रही है वरन लोगों की भावनाएं और विचार भी तेजी से बदल रहे हैं। यूरोप की विलासिता प्रिय और भौतिकवादी प्रजा भी अध्यात्म का आश्रय पाने के लिए भागी चली आ रही है।